Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शांति शांति ही शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद की चर्चा प्रवचन सत्र में हम लोग कर रहे हैं। आचार्य पिपलाद जी के पास एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य तप तथा श्रद्धा पूर्वक निवास करने के पश्चात सुकेश आदि छह ऋषियों में से कबंधी नाम के ऋषि ने आचार्य पिपलाद जी को प्रसन्न चित्त देख करके प्रश्न किया। वो है प्रथम प्रश्न, ऐसे छह प्रश्न तथा उनका उत्तर, ये प्रश्नोपनिषद है जिसे कहा जाता है मुंडक उपनिषद का व्याख्यान रूप। मुंडक उपनिषद में संक्षेप में प्रतिपादित अर्थ का विस्तार से निरूपण प्रश्नोपनिषद में है। मुंडक में पराविद्या तथा अपराविद्या ऐसी दो विद्याओं की चर्चा है। उनमें से अपराविद्या को छह प्रश्नों में से तीन प्रश्न के माध्यम से बताया जा रहा है प्रश्नोपनिषद में। पहला जो प्रश्न है अपराविद्या के फल विषयक है और अपराविद्या के स्वरूप विषयक दूसरा तीसरा प्रश्न है। तो अपरा विद्या के फल को स्पष्ट करने के लिए कबंधी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आचार्य पिपलाद जी। कबंधी का प्रश्न है कि कुतः इमा प्रजा प्रजायन्ते, ये सारी प्रजाएं कहां से उत्पन्न होती हैं, इनका उत्पादक कौन है शरीरों का। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य पिपलाद जी ने प्रारंभ करते हुए कहा कि प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा वाला जो प्रजापति है हिरण्यगर्भ है इस कल्प का, और उसे प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा क्यों हुई। तो पूर्व कल्प में वह हम जैसा ही मनुष्य था, वेदों का अध्ययन करके वेदों के द्वारा जो हिरण्यगर्भ का स्वरूप तथा अधिकार को बताया गया उसे जान करके उसे हिरण्यगर्भ की सारी विशेषताएं अपने में आ जाए, मैं भी हिरण्यगर्भ जैसा ही बनूं, हिरण्यगर्भ ही बनूं, ये कामना हुई। और इस कामना से प्रेरित होकर के उसने हिरण्यगर्भ बनने की साधना, हिरण्यगर्भ की अंग उपासना की। और इस कल्प में वह हिरण्यगर्भ बन करके प्रकट हुआ। तो पूर्व जन्म की साधना जो इस जन्म में फल देने के लिए अभिमुख हुई है, प्रारब्ध बन करके पूर्व जन्म के साधक की साधना इस जन्म में उसे हिरण्यगर्भ का जन्म दिला चुकी है। तो फिर हिरण्यगर्भ का जो सामर्थ्य है सारे संसार का निर्माण करके संसार को अपने अनुसार चलाने का और वह चलाते समय होने वाले सुख भोगने का उसका प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध ही संसार में 84 लाख प्रकार के प्राणियों का सर्जन करने की इच्छा हिरण्यगर्भ के अंदर उत्पन्न करता है। और हिरण्यगर्भ इस प्रकार प्राणियों के सर्जन की इच्छा से प्रेरित होकर के पंचीकरण सूक्ष्म भूतों का करके स्थूल ब्रह्मांड का निर्माण करता है। और स्थूल ब्रह्मांड जब फूट जाता है अंडा, तो उसमें से एक मिथुन प्रकट होता है। वह मिथुन है रई और प्राण। इस प्रकार प्रथम एक रई और प्राण नामक द्वंद्व को उत्पन्न किया, मिथुन को उत्पन्न किया हिरण्यगर्भ। और इसी मिथुन को चंद्र और आदित्य इस नाम से भी कहा जाता है। और ये चंद्र और आदित्य ही रूप द्वंद्व संवत्सराति द्वारा उत्पन्न करता है ये सारे 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात। इसे दिखाना है, इसके लिए चंद्र और आदित्य रूप मिथुन को सर्वात्मक प्रजापति से उत्पन्न होने के कारण बताया कि ये भी सर्वात्मक है। जैसे सफेद धागे से उत्पन्न हुए जितने भी थान हैं वे सब के सब कपड़े के सफेद ही होंगे, ऐसे सर्वात्मक प्रजापति से उत्पन्न हुआ द्वंद्व का यानी मिथुन का एक अंश चंद्रमा और द्वितीय अंश आदित्य, जिन्हें अन्न तथा अत्ता भी कहा जाता है, वे भी सर्वात्मक हैं। सर्वात्मक होने से प्रजापति रूप हैं। और वे कैसे प्रजा को उत्पन्न करते हैं इसे स्पष्ट करने के लिए आगे बताया जा रहा है कि इन्हीं से संवत्सर का निर्माण होता है। तो संवत्सर निर्मातृत्व इनमें दिखाने के लिए नवम कंडिका है प्रश्न उपनिषद के पहले प्रकरण की, उसमें बताया जा रहा है कि संवत्सरो वै प्रजापति ही तस्य अयने दक्षिणं चोत्तरंच तद ये हवै तद इष्टापूर्ते कृतम इत्युपासते ते चांद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्मात् एते ऋषय प्रजा कामाः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एष ह वै रयिर् यः पित्रियाण। ये नवम गंडिका है, इसमें प्रथम वाक्य के द्वारा बताया गया कि ये जो संवत्सरात्मक काल है यह प्रजापति के तरह प्रजापति ही है। तो यहां कई एक प्रजापति बताए जा रहे हैं। मूल में तो एक प्रजापति है हिरण्यगर्भ, और उसी का कार्य रई और प्राण मिथुन होने के कारण उस मिथुन को भी प्रजापति कहा। जैसे सोने से बने हुए गहनों को सोना कहा जाता है, ऐसे प्रजापति से मिथुन उत्पन्न हुआ इसलिए मिथुन को भी प्रजापति कहा गया। अब वो जो मिथुनात्मक प्रजापति हैं, उस मिथुनात्मक प्रजापति का कार्य ये संवत्सरात्मक काल है, इसलिए मिथुनात्मक प्रजापति रूप कहा जा रहा है संवत्सरात्मक काल को। यहां संवत्सरो वही प्रजापति ही, इसमें प्रजापति शब्द से सीधे हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति को नहीं समझना। यहां प्रजापति है मिथुनात्मक प्रजापति जो संवत्सर का निर्वर्तक है, तो हिरण्यगर्भ ही सीधे सीधे संवत्सर का निर्वर्तक नहीं बनता। मिथुन द्वारा हिरण्यगर्भ संवत्सर का निर्वर्तक बनेगा, और मिथुन को भी पहले कंडिकाओं में अष्टम कंडिका तक सर्वात्मक होने के कारण प्रजापति रूप कहा गया है। इसलिए संवत्सरो वै प्रजापति, इस वाक्यस्थ प्रजापति का अर्थ है मिथुन। तो मिथुनात्मक प्रजापति रूप ही यह संवत्सर है। तो संवत्सर कैसे प्रजापति रूप है मिथुनात्मक, तो इसे समझने के लिए पहले संवत्सर का स्वरूप समझना पड़ेगा। तो संवत्सर है तिथियों का समूह और दिन रात का समूह, 365 दिन रात का जो समूह वही तो संवत्सर है। तो 365 दिन रात यदि संवत्सर यानी वर्ष, उसमें से 365 दिन और 365 रात्रियों को निकाल लें और संवत्सर को बता दो कहें, तो संवत्सर कौन सा रहेगा अलग, और जो तिथियां हैं 30, शुक्ल पक्ष की 15 और कृष्ण पक्ष की 15, और ऐसे 12 मास की 30-30 तिथियां, उनका समूह ही तो वर्ष है संवत्सर है। और उन तिथियों को यदि संवत्सर से निकाल दिया जाए और संवत्सरात्मक काल को समझो बिना तिथि के, बिना दिन रात के, वो संवत्सर नाम का पदार्थ बता दो तो बता पाएंगे, नहीं होगा। ऐसे जिन धागों से वस्त्र बना है वो सारे धागे वस्त्र में से निकाल लिए जाए और वस्त्र बता दो कहेंगे तो वस्त्र नहीं रह सकता। धागों का ही जो विशेष गुथा हुआ स्वरूप है वो वस्त्र है, और उन धागों को निकाल लेंगे तो वस्त्र नाम की कोई वस्तु नहीं है, धागे ही वस्त्र है विशेष रूप से गुंथे हुए। ऐसे तिथि का जो समूह यही संवत्सर है, दिन रात का जो समूह है यही संवत्सर है, इससे अलग कोई संवत्सर नाम का पदार्थ काल नहीं है। और ये तिथियां कैसी बनती हैं, दिन रात कैसे बनते हैं, इनको बनाने वाला कौन है तिथियों को और दिन रात को, तो तिथियों का निर्वर्तक माना जाता है, निष्पादक माना जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा की एक एक कलाएं जैसे बढ़ती जाएगी तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब तिथियां कहलाती हैं। चंद्रमा जैसे जैसे एक एक कलाओं से उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आदि कलाओं, क्या नाम, तिथियों का निर्वर्तन होता है और पूर्णिमा में जाकर के षोडश कल हो जाता है। और पूर्णिमा के बाद फिर जैसे जैसे एक एक कलाओं से रहित हो जाता है तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे होते होते अमावस्या तक चंद्रमा मात्र एक कला वाला रह जाता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा की एक ही कला, वो उसकी नित्य कला है और उसी कला के साथ एक एक कलाओं को जोड़ते जाएंगे, बढ़ती जाएगी। 15 कलाएं चंद्रमा की बढ़ने वाली, घटने वाली है, आने जाने वाली है, आगंतुक है, अवागमनशील है। तो इन्हीं चंद्रमा के कलाओं के आवागमन के कारण निर्वर्तन होता है तिथियों का, ऐसा हर महीने में होता है और पूरे 12 महीने में होता है। इसलिए उन 12 महीने में होने वाली जो चंद्रमा की कलाओं के कारण, कलाओं के घटने बढ़ने के कारण तिथियां, उन सारे तिथियों का समूह माना जाता है एक वर्ष संवत्सर। और वे संवत्सर की अवयव रूपा जो तिथियां हैं, जिन तिथ्यात्मक तिथियों के समूह रूप संवत्सर को माना जा रहा है, उनका निर्वर्तक है चंद्रमा। और चंद्रमा है जो मूल प्रजापति के द्वारा सृष्ट मिथुन का एक अंश रई, रई और प्राण नामक मिथुन हिरण्यगर्भ ने निष्पन्न किया ना, तो उसमें जो रई है यही चंद्रमा है और उसी चंद्रमा से निर्वर्तित हो रही है संवत्सर की अवयव रूपा ये तिथियां, जिन तिथियों का समूह रूप संवत्सर को माना जा रहा है। इसलिए तिथियों द्वारा संवत्सर का निष्पादक माना जाता है चंद्रमा को। ऐसे दिन रात इनका निर्वर्तक है सूर्य, जो मूल प्रजापति के द्वारा सृष्ट मिथुन में से एक अंश है प्राण, उसी को सूर्य कहा गया है, आदित्य कहा गया है। और आदित्य के उदय अस्त को लेकर के अहोरात्र माना जाता है, दिन रात मानी जाती है। सूर्य के उदय से अस्त तक दिन, अस्त से उदय तक का समय रात्रि। तो इस प्रकार सूर्य है यानी प्राण है दिन रात का निर्वर्तक। ऐसे 365 दिन रात जो सूर्य के द्वारा निर्वर्तित है, निष्पन्न है, और उन 365 दिनों का समूह माना गया संवत्सर को। उन 365 दिन और 365 रात्रि को यदि अलग कर दें तो संवत्सर नाम का काल कुछ रहेगा नहीं। 365 दिन, 365 रात्रि का समूह ही संवत्सर रूप काल है। और सूर्य इस जिन दिन रात्रि के समूह रूप समूह का स्वरूप है संवत्सर, उन दिन रातों का निर्वर्तक आदित्य होने के कारण आदित्यात्मक माना गया। प्रजापति शब्द से यहां पर आदित्य और चंद्रमा दोनों को लेना है, मिथुन को लेना है। संवत्सरो वै प्रजापति, इस वाक्यस्थ प्रजापति का अर्थ है मिथुनात्मक प्रजापति, और ये संवत्सर मिथुनात्मक प्रजापति से अलग नहीं है, तदात्मक ही है। क्यों तदात्मक है? भले ही संवत्सर को माना गया सूर्य और चंद्रमा से निर्वर्तित, मिथुन से निर्वर्तित, तो उसका कार्य हुआ, उससे अभिन्न क्यों माना गया? तो कहते कार्य कारण का आभेद होता है। ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने कहा तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य, कार्य अपने कारण से अलग नहीं होता। तो संवत्सर मिथुनात्मक प्रजापति का कार्य होने से, मिथुनात्मक प्रजापति संवत्सर का कारण होने से कार्य को कारणात्मक कहा गया, संवत्सरो वै प्रजापति इस वाक्य से। और भी एक हेतु बताया जा रहा है संवत्सरात्मक प्रजापति के, तिथि समूह रूप होने से और दिन रात्रि के समूह रूप होने मात्र से ही इसे मिथुन निर्वर्त्य कहा जाता है, मिथुनात्मक कहा जाता है, ऐसी बात नहीं। अपितु ये संवत्सर के जो दो अवयव हैं, दो अयन, ये भी ये मिथुन से ही निर्वर्तित हैं, निष्पन्न होते हैं, सूर्य चंद्रमा के ही कार्य हैं अयन भी, इसलिए भी अयन द्वयात्मक संवत्सर को मिथुनात्मक प्रजापति रूप कहा जा रहा है। इसे दिखाने के लिए दूसरे वाक्य में कहा जा रहा है कि तस्य अयने, अयने ये द्विवचन है, अयन शब्द का अर्थ है मार्ग और अयन शब्द का अर्थ अवयव भी होता है संवत्सर का। तो तस्य यने संवत्सरात्मकस्य प्रजापते हे, अयने यने दो अयन है, दो अवयव हैं, वो कौन है? तो दक्षिणंच उत्तरंच, एक दक्षिण और दूसरा उत्तर नामक दो अयन है, दक्षिणायन उत्तरायण। तो 365 दिन रात्रि समूहात्मक मान लो, या 6-6 महीने का जो एक एक अयन है, उन अयन द्वयात्मक मान लो संवत्सर को, तो संवत्सर का 6 महीना रूप दक्षिणायन और 6 महीना रूप उत्तरायन, इन दो अयनों का भी निर्वर्तन आदित्य तथा चंद्रमा से ही होता है, इसलिए भी संवत्सर को चंद्र आदित्य मिथुन रूप प्रजापति स्वरूप कहा जा रहा है। ये यहां पर दिखाने के लिए कहा कि तस्य अयने दक्षिणंच उत्तरंच, तो 6 महीने दक्षिणायन है, कौन से 6 महीने? तो 6 महीने दक्षिणायन, 6 महीने उत्तरायण कहा जाता है। तो जो अपने हिंदुओं के 12 महीने हैं उनके नाम मालूम है कि नहीं? वो जनवरी फरवरी ये नहीं, चैत्र वैशाख आदि, उन चैत्र वैशाख से लेकर के फाल्गुन तक जो 12 महीने हैं, इनमें से 6 महीने दक्षिणायन और 6 महीने उत्तरायण होता है। तो कौन से 6 महीने दक्षिणायन होंगे, कौन से 6 महीने उत्तरायण होंगे? तो ज्येष्ठ से कार्तिक तक 6 महीने, ज्येष्ठ आषाढ़ भाद्रपद, श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक, ये 6 महीने दक्षिणायन होता है। और मार्ग शीर्ष से लेकर के ज्येष्ठ वहां तक वैशाख तक 6 महीने उत्तरायण, तो ये 6 महीने दक्षिणायन 6 महीने उत्तरायण, ज्येष्ठ से कार्तिक तक, मार्ग शीर्ष से वैशाख तक। और ये जो दो आयन है, इन दो आयनों को यदि निकाल लिया जाए संवत्सर में से, तो संवत्सर नाम का कोई काल नहीं रहेगा ना, वर्ष क्या होगा, 12 महीना ही वर्ष है, ये दो आयन मिलकर के ही एक वर्ष होता है। और इसलिए, और इन दोनों आयनों को माना जाता है चंद्र और सूर्य से निर्वर्तित। कैसे चंद्र और सूर्य का कार्य है ये आयन, आयनों से आयनों का निर्माण इन दोनों से कैसे होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए या ये कहा जा रहा है कि ये चंद्र और सूर्य ही दक्षिणायन से जब गमन करते हैं आपके ज्येष्ठ मास से लेकर के कार्तिक मास तक, तो जो केवल कर्मी हैं स्वर्गलोक में गए हुए और पाप कर्म का फल भोगने के लिए बाकी लोकों में गए हुए, उनका उपभोग्य जो अन्न है उसका निर्माण करते हैं, उनके भोग्य पदार्थों का निर्माण इन 6 महीने में जिससे हो ऐसा वो गमन करते हैं उस चंद्रमा और सूर्य। इसलिए आप चंद्र और सूर्य को इन महीनों में उदित और अस्त होते हुए देखेंगे तो दक्षिण की ओर से, ऐसे यानी अग्नेय कोण से, दक्षिण सीधे सीधे दक्षिण में नहीं, लेकिन दक्षिण और पूर्व का जो मध्य कोण है, कोण दिशा अग्नेय, वहां से उदित होता हुआ और नैऋत्य में अस्त हुआ होता हुआ देखेंगे। तो केवल कर्मी के द्वारा भोग्य जो पदार्थ हैं उनका निर्माण दक्षिणायन से गमन करते हुए सूर्य और चंद्रमा से होता है।